13 दिसंबर रविवार दिन भर मैं हूं संदीप सोनी। पेरिस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय की जीत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, आगे राह इतनी भी आसान नहीं।
So I believe this moment can be a turning point for the world. We've shown that the world has both the will and the ability.
पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी में धमाका, कम से कम 15 लोगों की मौत। नेपाल में सरकार, मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और आंदोलनकारी संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के बीच गतिरोध है जारी। फैला उजियारे में आज बात राजा राम मोहन राय की।
Beneath this stone rest the remains of Raja Ram Mohan Roy Bahadur.
इस पत्थर के नीचे राजा राम मोहन राय बहादुर के अवशेष हैं। भारत की महान प्रतिभाओं में से एक रहे हैं राजा राम मोहन राय।
होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हुए समझौतों पर सभी देशों ने सहमति जताई है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास ये सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा कि कम कार्बन वाले भविष्य को पाने के लिए ये एक नया मोड़ साबित हो सकता है। समझौते को महत्वाकांक्षी करार देते हुए ओबामा ने कहा कि हमने दिखा दिया है कि अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या हासिल कर सकते हैं। भारत और चीन ने भी समझौते का स्वागत किया है। दिल्ली में रेलवे की ज़मीन से झुग्गियों को हटाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट किया कि इतनी सर्दी में आज रेलवे वालों ने 500 झुग्गियां तोड़ दीं और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने इस बारे में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी बात की। रूस के वोरोनेश इलाके में क्लिनिक में आग लगने से 22 मरीजों के मारे जाने की खबर है। कई मरीज गायब भी हैं और 20 से भी ज़्यादा घायल हैं। ये क्लिनिक लकड़ी से बना हुआ था जो इस आग में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आग लगने की वजह का पता भी नहीं लग सका है। हादसे के वक्त क्लिनिक में मौजूद नर्स अनातोलियो सर्गियंको ने कहा कि कई लोगों को वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने कहा, मुझे भी हादसे के वक्त सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं वहां से बस बाहर निकला और किसी तरह से बाहर मौजूद लोगों की मदद से मुख्य दरवाजा खुलवाया। उसके बाद जितने लोगों को हम बाहर निकाल पाए उनको बाहर निकाल लिया गया। क्लिनिक में मौजूद नर्स अनातोलियो सर्गियंको। पाकिस्तान के कवायली इलाके कुर्रम एजेंसी में एक भीड़ वाले बाजार में हुए धमाके में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार परचिनार में कपड़ों के एक बाजार में हुए धमाके में 40 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि धमाके के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पराचिनार अफगान सीमा के करीब है और वहां रहने वाले ज़्यादातर शिया समुदाय के हैं, लेकिन इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और वहां शिया और सुन्नी समुदाय के बीच शांति कायम करने की कोशिशें आमतौर पर नाकाम साबित हुई हैं। ग्वांतानामो बे की जेल में ब्रिटेन के आखिरी कैदी रहे शकर आमिर ने चरमपंथियों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें देश छोड़कर चले जाने को कहा है। आमिर क्यूबा की ग्वांतानामो बे जेल में 14 साल काटने के बाद इसी साल अक्टूबर में लंदन लौटे हैं। उन्होंने ब्रितानी अखबार मेल से बातचीत में चरमपंथी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि आप यूं ही किसी को नहीं मार सकते। उनका कहना था कि इस्लाम के बारे में उनकी जानकारी तो ये है कि आम नागरिकों को मारने की अनुमति नहीं है। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रही हैं। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब में महिलाएं चुनाव में हिस्सा ले रही और चुनाव मैदान में उतरी हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। भारत में, खासकर उत्तर भारत में सर्दी बढ़ती जा रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में आज अच्छी धूप निकली, लेकिन थोड़ा ऊपर पहाड़ों पर और गंगा के मैदानी इलाकों में हर दिन पहले की तुलना में ज़्यादा सर्द होता जा रहा है। उधर पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समापन हो चुका है, जहाँ 195 देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ है जिसमें विकासशील देशों को मौसम में आ रहे बदलाव से निपटने और प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ी आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। खास बात यह है कि चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस का दावा है कि यह समझौता प्रदूषण पर काबू पाने के लिए काफ़ी नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
एक लंबी बातचीत के बाद मौसम में बदलाव से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों में जो समझौता हुआ है उसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर किया कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटना एक चुनौती तो है, लेकिन इस सम्मेलन में क्लाइमेट जस्टिस यानी मौसम को लेकर न्याय की जीत हुई है। चीन ने भी समझौते का पक्ष लेते हुए कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए तैयार हुए इस समझौते में विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच जिम्मेदारियों का न्यायपूर्ण बंटवारा हुआ है। चीन के विशेष प्रतिनिधि जी जिनवा ने कहा,
चीन पेरिस समझौते का स्वागत करता है। अपने निरंतर विकास को कायम रखने के लिए मौसम में बदलाव से निपटना हमारी जरूरत है। मानवता के जिम्मेदार समुदाय के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी का एक अंग भी है। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पूरी तरह पालन करेगा, यानी अपनी राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए चीन बदलाव के लिए रखे हुए उद्देश्यों की तरफ काम करता रहेगा।
भारत ने भी इस समझौते का गर्मजोशी से स्वागत किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये समझौता भारत के अनुरूप है और हम इसका पालन करेंगे।
भारत की सफलता इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्लाइमेट जस्टिस का विषय रखा, जो लाइफस्टाइल का विषय रखा, वो भी आया इसमें, और जो भी भारत को चाहिए था वो सब उस एग्रीमेंट में मिल गया है। अब हम जोर से काम करेंगे।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पेरिस का ये नया समझौता दुनिया के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।
So I believe this moment can be a turning point for the world.
मेरा विश्वास है कि ये दुनिया में एक बड़े बदलाव का मोड़ हो सकता है। हमने ये दिखा दिया है कि दुनिया में इस चुनौती से निपटने की इच्छा और सामर्थ्य दोनों है। ये आसान नहीं होगा, इसलिए हम लापरवाही नहीं बरत सकते। हमारी भावी पीढ़ियां साफ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और बचत के फायदे देखेंगी। हो सकता है कि हम अपने जीवन में इसके पूरे फायदे न देख सकें, लेकिन अहम यह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा ये ग्रह एक बेहतर जगह होगा।
राष्ट्रपति ओबामा के शब्द। अफ्रीकी देशों ने उम्मीद जताई है कि इस समझौते के तहत गरीब देशों को प्रदूषण से निपटने के लिए और अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस समझौते के तहत सबसे ज्यादा रकम विकासशील देशों की मदद के तौर पर दी जाएगी और एक निश्चित अवधि के बाद इस समझौते की समीक्षा भी होगी। हालांकि कई पर्यावरण संस्थाओं को संदेह है कि ये समझौता प्रदूषण के मौजूदा गंभीर दौर से निपटने के लिए ना काफी है, लेकिन शुरुआत तो हुई है और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने सारे देश एक ही मसले पर साथ आए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि हमारी भावी पीढ़ियां एक बेहतर माहौल में सांस ले पाएंगी।
रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना, और इस रिपोर्ट के दौरान पृथ्वी की 10 हैरान कर देने वाली तस्वीरें bbchindi.com पर आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और रुख कर रहे हैं पाकिस्तान का, जहां कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी में भरे बाजार में आज एक धमाका हुआ जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। इस समाचार के बारे में और जानकारी के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की पेशावर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रिफतुल्ला औरगजई से।
ये धमाका जो है कुर्रम एजेंसी के हेडक्वार्टर या जो सदर मुकाम है पारा चिनार, वहाँ पे एक बिल्कुल बाजार के अंदर हुआ है। और इसमें अभी तक जो सरकारी हुकाम की तरफ से हमें बताया गया है, इसमें तकरीबन 15 या 15 लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं और कोई 30 से ज्यादा जो है वो जख्मी है। लेकिन जो कुर्रम एजेंसी से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट है, MP है सज्जाद तूरी, वो वहाँ पे मौजूद भी है। उन्होंने BBC से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन कोई 22 अफराद जो है, यानी 22 इसमें हालात है, और मोर देन 60 जो है वो इंजर्ड है। जो इत्तला अभी मिल रही है उसके मुताबिक ये एक प्लांटेड बम था और वहाँ पे बाजार के अंदर कुछ ये जो विंटर ड्रेसेस वगैरह बेच रहे थे, ये स्वेटर्स, और एक लंडा बाजार था उसके अंदर हुआ है। जो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वहाँ पे काफी भीड़ था।
रिफतुल्ला साहब, ये बताइए, आप बता रहे थे कि ये प्लांटेड बम था, बम लगाकर धमाका किया गया था, क्या ये इलाका किसी तरह के चरमपंथियों के निशाने वाला इलाका है? और ये जो कुर्रम एजेंसी है, पाकिस्तान का नक्शा यदि हम देखें तो ये कुर्रम एजेंसी है कहाँ पर पाकिस्तान में?
ये असल में कुर्रम एजेंसी जो है वो ट्राइबल एरिया है और ये तकरीबन 7 ट्राइबल एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के वेस्ट में वाके है। जो अफगान सरहद हमारे वेस्ट में पड़ती है, ये सारा एक पूरा बेल्ट है जिसमें खैबर एजेंसी, ये सारा यहाँ से लेकर तो ये पूरा कुर्रम एजेंसी था, फिर शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, ये सारा एक ट्राइबल बेल्ट है जिसे कहते हैं। तो ये अफगान सरहद से जो पारा चिनार का इलाका है, ये कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, बड़ा करीब है। और ये जो कुर्म एजेंसी है ये पाकिस्तान की दूसरी ऐसी एजेंसी है जहाँ पे सेक्टेरियन क्लैशेस यानी शिया सुनी के फसादात जो है वो बड़े होते रहे हैं, और इसकी यहाँ पे पार्टिकुलरली इस एजेंसी में सेक्टेरियन क्लैशेस की एक अपनी तारीख है। बहुत पहले यानी 50 ईयर्स से पहले भी यहाँ पे होते रहे हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी खामोशी आई, लेकिन अभी 2007 में ये दोबारा यहाँ पे सेक्टेरियन क्लैशेस के एक बहुत बड़ा वेव आया। 2008 में भी, 9 में भी, इसकी वजह से हजारों लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। जो दोनों शिया और सुनी साइड थे उनके बीच में फिर एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद से फिर 2 सालों से वहां पे अमन था। लेकिन ये आज का जो धमाका हुआ है इसके बारे में जो वहां के एमएनए है साजिद तूरी, जिसका मैंने जिक्र भी किया, उसने ये कहा है कि ये कोई सेक्टेरियन क्लैश नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो मरने वाले लोग हैं वो शिया भी हैं और उसमें सुन्नी लोग भी शामिल है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी का वाकया है, लेकिन अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है कि कौन लोग हैं।
ये थे पेशावर से बीबीसी उर्दू संवाददाता रिफतुल्ला औरकजई। और पाकिस्तान के बाद अगली खबर नेपाल से, जहां सरकार, मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और आंदोलनकारी संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के बीच आज एक अहम बैठक हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस बैठक का एजेंडा जानने के लिए और तमाम दूसरे पहलुओं को समझने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले काठमांडू में बात की बीबीसी नेपाली संवाददाता फणीन्द्र दहल से।
आज बैठक विफल हुआ क्योंकि ये अपोजिशन नेपाली कांग्रेस और मधेशी मोर्चा दोनों ने अपना अपना स्टैंड कायम रखा। नेपाली कांग्रेस कह रहा है कि वो मधेशी मोर्चा की माग बमोजिम, उनके नेतृत्व में जब यहाँ पर सरकार था उसने 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल दर्ता कराया था, उसका मकसद था कि ये जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण करने की संवैधानिक गारंटी की जाएगी, और मधेशी मोर्चा का जो रिप्रेजेंटेशन का माग था उसको समावेशी समानुपातिक ढंग से वो भी इंश्योर किया जाएंगे। मगर मधेशी पार्टीज कह रहे हैं कि वो बिल सफिशियंट नहीं है, वो अमेंडमेंट में जो सरकार का सीमांकन का रचना किया गया है नए संविधान में उसका भी संशोधन का गारंटी चाहते हैं। उसके साथ साथ ये बैठक में रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी जो बनाने की यहाँ पे चर्चा हो रही है, भूकंप के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति के पुनर्निर्माण के लिए, उसके बारे में भी बातचीत हुई। मधेशी मोर्चा ने कहा कि वो नेपाल में भूकंप का रिकंस्ट्रक्शन बहुत डिले हो चुका है और उसके कारण निपटे गए मानवीय संकट के प्रति जिम्मेवार ढंग से स्टेप चलने के लिए वो पार्लियामेंट से पास करने देंगे। मगर नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि वो रिकंस्ट्रक्शन बिल जो तैयार हुआ है वो अकेले ही पार्लियामेंट में पेश करने के लिए वो अनुमति नहीं देंगे, उसका साथ साथ उनका सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दर्ता करा है वो भी पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना चाहिए। इन विवादों के बीच आज यहाँ के जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर ने भी सहमति के लिए कोशिश किया था मगर वो भी नाकाम हुई और पार्लियामेंट मीटिंग बैठ नहीं पाया।
जो आप बता रहे हैं कि बैठक नाकाम हुई, यदि ये बैठक सफल हो जाती तो नेपाल के हालात में किस तरह के बदलाव आ सकते थे?
मधेशी मोर्चा कह रहे हैं कि अगर वार्ता सक्सेस हो जाएंगे तो वो नाके में उनका जो समर्थकों धरना में बैठे हैं वो फिरता बुलाए जाएंगे। सब नाका में तो वो धरना में नहीं बैठे हैं मगर बीरगंज का जो नाका है जहाँ से नेपाल इंडिया ट्रेड का अधिकांश सप्लाई जाता है वहाँ पर उनका कार्यकर्ता धरना में बैठे हैं, इसके वजह से भी ये डिस्ट्रप्शन है सप्लाई लाइन में, और वो बदलाव आ सकता था। और यहाँ पर जो लंबे समय से एक डेडलॉक है उस डेडलॉक को फुकाने के लिए और ये नए संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मधेशी मोर्चा के साथ सहमति हो जाती है तो वो इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है।
ये थे काठमांडू में मौजूद बीबीसी नेपाली संवाददाता फणीन्द्र दहल। तेरह दिसंबर रविवार का दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, 7:44 होने वाले हैं और अब हर रविवार की तरह आपको इंतजार होगा फैलाओ जियारा का। जी हाँ, फैलाओ जियारा जो प्रोफेसर सुनील खिल्लानी की श्रृंखला इनकारनेशंस का हिंदी रूपांतरण है। इसकी 22वीं कड़ी में आज बात राजा राममोहन राय की, जिन्होंने भारतीय समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुरूतियों को दूर करने की दिशा में जमकर काम किया। हिंदी रूपांतरण मोहनलाल शर्मा।
Memorial here with a pelican feeding its young carved on it.
ब्रिटेन के इस स्मारक के बाहर बनी झील में बत्तख अपने बच्चों को दाना खिला रही है, लेकिन यहीं पर एक फरिश्ते के अवशेष दफन हैं। ये 19वीं शताब्दी में बने कब्रिस्तान का हिस्सा है जो ब्रिस्टल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये काफी हद तक किसी टैबलेट जैसा दिखता है जिस पर स्मृति लेख दर्ज हैं। इसके पत्थर बताते हैं कि ये कभी बेहद भव्य और कलात्मकता से भरपूर रहा होगा। ये स्मारक काफी हद तक लंदन के अल्बर्ट मेमोरियल से मिलता है। आप इसे इसका छोटा रूप मान सकते हैं। इसमें एक स्मारक तो बेहद ही खास है, काफी भव्य है। इसके सामने दूसरे स्मारक का महत्व थोड़ा कम हो जाता है। भारतीय शैली में बना यह स्मारक करीब 30 फीट ऊंचा है।
It has the typical Bengali
dome. बंगाली शैली में बनी वर्गाकार रचना। स्मारक में दानेदार पत्थर के 12 स्तंभ हैं। इसके ऊपर कमल के फूलों की आकृति उकेरी गई है। इसे आप छतरी कह सकते हैं। मृतकों की याद में इसे बनाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसे आपको निर्माण नहीं दिखेंगे।
Beneath this stone rest the remains of Raja Ram Mohan Roy Bahadur.
इस पत्थर के नीचे राजा राम मोहन राय बहादुर के अवशेष हैं। भारत की महान प्रतिभाओं में से एक रहे हैं राजा राम मोहन राय। वो कई भाषाओं के जानकार थे। वो अपने समय के महान विद्वानों में शुमार किए जाते हैं। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो सदा प्रयासरत रहे। उन्हें मूर्ति पूजा का विरोध करने और सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए याद किया जाता है। उनका निधन ब्रिस्टल में 1833 में हुआ। तब तक बंगाली विद्वान राजा राम मोहन राय दुनिया भर में अपनी बौद्धिकता के लिए मशहूर हो चुके थे। उन्हें समकालीन अंग्रेज लॉयन ऑफ द सीजन कहते थे। दरअसल उनके बड़े बालों के चलते उनकी तुलना शेरों से होने लगी। उनके स्टाइलिश बालों को ब्रिस्टल के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में परंपरागत मान्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले सुधारों का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने वालों में एक थे। कार्ला कॉन्ट्रैक्टर एक इतिहासकार हैं। उन्होंने राजा राम मोहन राय के ब्रिटेन में बिताए 3 सालों का दस्तावेज तैयार किया है।
उनकी लंबाई 6 फुट थी, लंबी कदकाठी। वे मुसलमानों की तरह लबादा पहनते थे, जूते इंग्लिश पहनते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग प्रभावित हो जाते थे। वे करिश्माई भी थे और उनमें प्रतिबद्धता भी थी। उन्हें जिस भी समारोह में बुलाया जाता वो जाते। वे वहाँ उन लोगों से बात करते जिनसे वह बात करना चाहते थे। उनकी बहुत लोगों से जान पहचान थी।
राजा राम मोहन राय की दार्शनिक जर्मी बेंथम से जान पहचान थी। वो राय को ब्रितानी संसद में देखना चाहते थे। राय ने लैटिन अमरीकी क्रांति का जश्न मनाया था और फ्रांस के सम्राट के साथ भोजन की मेज पर बैठ चुके थे। अपने सिद्धांतों, विचारों और तर्कों से राजा राम मोहन राय आज भी भारत में प्रासंगिक हैं। भारत के मसलों पर काम करने वाले और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर बायले कहते हैं,
राम मोहन वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव अ सिग्निफिकेंट व्यू ऑफ द आउटसाइड।
राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिनका भारत के बाहर दुनिया के बारे में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था। ये नजरिया मुगलों की दुनिया या फिर हिंदुओं की दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि यूरोपीय दुनिया के बारे में भी था। वो मानते थे कि भारत विश्व समुदाय का ही एक हिस्सा है।
राजा राम मोहन राय का बचपन बंगाल में बीता। वो संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो दौर अस्थिरता का था। उनके पिता रमाकांत जमींदार थे। उन्हें बंगाल की मनसबदारी प्रथा में फायदा मिला, इस लिहाज से वो अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं,
मेरे ख्याल से उनकी पृष्ठभूमि बेहद अहम थी। वे कुलीन वर्ग के थे, काफी पढ़े लिखे। लैंगिक भेदभाव के प्रति भी उनकी चिंता थी। आज भी इस भेदभाव की बात उच्च वर्ग के महिलावादी ही कर पाते हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज भी समाज में निचले दर्जे की है।
20 साल की उम्र तक आते आते राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लगे थे। साथ ही उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। वो अधिकारियों को कर्ज देने लगे। उनके पास पहले से ही काफी दौलत थी, उन्होंने इसे और बढ़ाया। 1814 में 42 साल की उम्र में उनके पास इतनी दौलत जमा हो गई कि अब उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कामों, धार्मिक और राजनीतिक बदलावों की दिशा में लगाने का मन बनाया। इसमें उनकी दिलचस्पी कहीं ज्यादा थी।
Here in Calcutta, where Roy settled for this new chapter of his life,
कोलकाता में राजा राम मोहन राय के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। उदारवादी रुझान, तार्किक विचारों के चलते सुधार व विकास की बात ने जोर पकड़ा। उनका महल नुमा जॉर्जियाई शैली में बना घर मुक्त विचारकों का साप्ताहिक ठिकाना बन गया। ये वही लोग थे जो कि प्रेस की आजादी चाहते थे और ब्रिटिश हुकूमत के रवैये में बदलाव चाहते थे, साथ ही वो परंपरागत हिंदू रीति रिवाजों को भी बदलना चाहते थे। उस दौर में भारतीय बौद्धिकों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? इसके पहले उदाहरण थे राजा राम मोहन राय। दरअसल उस दौर में दो विचारों में कश्मकश जैसी स्थिति थी। पहली बात तो ये थी कि क्या अपनी ऐतिहासिक बौद्धिक संपदा के इस्तेमाल से भारत को बदलना बेहतर होगा, या फिर ज्यादातर भारतीयों को पश्चिम की ओर रुख करना चाहिए और विदेशी मूल्यों व विचारों के जरिए बदलाव लाना चाहिए। हालांकि इसमें अपनी पहचान के कमतर होने का खतरा जरूर था। राय ने इस उहापोह का हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने भारत के सुनहरे युग की कल्पना की, अतीत की आलोचना करके उसमें परिवर्तन की वकालत की। क्रिस्टोफर बायले कहते हैं,
उन्होंने कभी सुधारक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके विचार भारत के प्राचीन धर्म वेद अद्वैत वेदांत पर आधारित थे। वो धर्म जो भ्रष्ट हो गया था, जो 300 से 400 साल के सफर में एकेश्वरवाद से बहुईश्वरवाद की ओर चला गया था, वे भारत के प्राचीन धर्म को फिर से वापस लाना चाहते थे।
राम मोहन राय ने ईसाइयों की एकजुटता वाले विचार से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो मूल रूप से कड़े धार्मिक सुधारों की वकालत करता था। ये ब्रह्म समाज आज भी मौजूद है। अमर्त्य सेन के मुताबिक राजा राम मोहन राय का जीवन विरोधाभासों से घिरा हुआ था।
राम मोहन राय सुधारक थे। जो चीजें उन्हें बेचैन कर रही थी, उन पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। शुरुआती वर्षों में वे अंग्रेजों के कट्टर आलोचक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वे बदलते गए। वे अपने समय के प्रगतिशील और उच्च वर्ग के सुधारक थे। उन्होंने कुछ बेहतरीन चीजें की।
राम मोहन राय का सबसे बेहतरीन काम भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आवाज उठाने का रहा। उन्होंने हिंदू धर्म की सती प्रथा को खत्म करने की मांग की। 1816 में राय ने हुगली नदी पर बसे श्रीरामपुर के बैपिस्ट मिशनरी का दौरा किया। ये मिशनरी सती को मानव बलिदान मानती थी। 1818 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर अपने विचार रखे। इससे उनका नाम भारत के बाहर फैला। सती प्रथा की एक घटना का जिक्र भारत में काम करने वाली एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी फैनी पार्क्स ने किया है।
नदी में स्नान करने के बाद विधवा एक लकड़ी में आग लगाती है। उससे वह चिता के ढेर में आग लगाती है। उसके बाद सती प्रथा की तैयारी शुरू हो जाती है। आग पकड़ने के बाद वो लकड़ियों के ढेर में बैठ जाती है, पति की लाश के सिर को गोद में रखती है और कई बार राम राम सती का उच्चारण करती है। हवा के जोर पकड़ने और आग के पास पहुंचने पर वो दर्द से अपने हाथ और दूसरे अंगों को हिलाती और आग से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन चिता के पास अनुष्ठान को पूरा करने वाला एक आदमी मौजूद है, जो ये देखता है कि अगर उसे बलपूर्वक आग में नहीं धकेला जा सकता है, तो वो तलवार से उसकी गर्दन अलग कर देता है और वो आग के हवाले हो जाती है।
सती प्रथा की जिन घटनाओं ने राजा राम मोहन राय को व्यथित किया, उनमें से कई उस समय के कलकत्ता के नजदीक इसी काली मंदिर में हुए थे। दूसरे मानव कृत्यों की तरह ही सती को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। आत्म आहुति के नाम पर होने वाली इस जघन्य हत्या से परिवार विधवाओं की देखरेख की जिम्मेदारी से बच जाता था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक अंग्रेज अधिकारी सती प्रथा को स्वीकारते रहे। वो धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देने में हिचकिचाते रहे, लेकिन सती प्रथा के खिलाफ राम मोहन राय के अभियान ने इसे मानवाधिकारों से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया। अमर्त्य सेन के मुताबिक राजा राम मोहन राय का ध्यान दूसरी समस्याओं के बदले सती प्रथा पर ही क्यों गया, इसे समझना मुश्किल नहीं है।
सती प्रथा बहुत ही घिनौनी थी। इसकी बर्बरता ने उन्हें भयभीत किया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाना चाहिए कि राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में दिलचस्पी क्यों ली। उसके उनके पास कारण रहे होंगे। उनकी संवेदना सामाजिक बदलाव के बदले इस घिनौनी प्रथा को रोकने की रही होगी।
1829 में ब्रिटिश हुकूमत ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। ऐसा करके उन्होंने भारत पर अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश की कि वो भारतीयों को सभ्य और शिक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो ये साबित कर रहे थे कि अंग्रेजों का शासन भारत के फायदे में है। ये राम मोहन राय के लिए फायदेमंद रहा। उन्होंने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता वाले सुधारक के तौर पर प्रमोट किया। इस पाबंदी के 2 साल बाद राम मोहन राय नाव से ब्रिटेन गए। वो 1829 में लगी पाबंदी को पलटने वाले कानून का विरोध करने गए थे। कार्ला कॉन्ट्रैक्टर एक इतिहासकार हैं।
He found himself arriving in England at just the moment.
वे जब इंग्लैंड पहुंचे, तब यहाँ महिला अधिकार, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी से जुड़े आंदोलन चल रहे थे। वे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े थे, सती प्रथा का विरोध किया था, लिहाजा उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
But in the summer of 1830,
1833 की गर्मियों में राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल की यात्रा पर थे। उन्हें मेनिनजाइटिस बीमारी हुई और अचानक उनकी मौत हो गई। उनके अवशेष इस छतरी के नीचे ऑर्नोस वेले कब्रिस्तान में हैं। कुछ भारतीय राम मोहन राय को औपनिवेशिक दिमाग वाला मान सकते हैं, जो ब्रिटिश उपनिवेश की चापलूसी में भी दक्ष थे, लेकिन दूसरे लोगों की राय में उनमें भारतीय राष्ट्रीयता की शुरुआती झलक दिखती है। राम मोहन राय के जीवन से ये उम्मीद बंधती है कि प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ शासन करना जानते थे, और ये उन ब्रिटिश अफवाहों के बिल्कुल उलट है जिसमें ब्रिटिश भारतीय समाज को उदारवादी और लोकतांत्रिक विचारों के लिए अनुपयुक्त ठहराते रहे थे। प्रसिद्धि और पहचान हासिल करने की ललक के बावजूद राजा राम मोहन राय अपनी एक स्थायी विरासत छोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने भारतीयों को सर्वमान्य मूल्यों के प्रकाश में अपनी मान्यताओं पर सवाल खड़े करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरह से अपने अतीत की खोज पतित वर्तमान से बेहतर हो सकती है, और बेहतर भविष्य के लिए एक भारतीय भी अपने अतीत को हासिल करने की ख्वाहिश कर सकता है।
फैलाओ जियारे के बाद हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि अगले कार्यक्रम घटना चक्र में रात 9:30 एक विशेष साक्षात्कार हम आपको सुनवाने वाले हैं, जिसका सीधा संबंध भारत में सहिष्णुता असहिष्णुता और उससे जुड़े विवाद से है। सुनना ना भूलिएगा। और फिलहाल वक्त हो चला है खेल की खबरों का। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो दुबई में आयोजित की जा रही वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स में महिला एकल वर्ग का फाइनल आज 4वीं वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा ने अपने नाम किया। उन्होंने इस फाइनल मुकाबले में चीन की वांग यान को 1:03 तक चले संघर्ष के बाद 22-21-18 से हराया। इसी चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल दूसरी वरीयता हासिल जापान के केंतो मोमोता ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने 4वीं वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को 21-15-21-12 से केवल 38 में हराया। उधर डुनेडिन में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज खेल के 4वें दिन न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 405 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका ने स्टंप के समय तक 3 खोकर 109 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली बारी 3 पर 267 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की माफ कीजिए अपनी दूसरी पारी, और अभी भी श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 296 रनों की जरूरत है और उसके 7 बाकी हैं।
बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम के आखिर में विश्व समाचार एक बार फिर अमल चौधरी से।
बीबीसी समाचार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हुए समझौते पर सभी देशों ने सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास ये सबसे अच्छा विकल्प है। दिल्ली में रेलवे की जमीन से झुग्गियों को हटाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट किया कि इतनी सर्दी में आज रेलवे वालों ने 500 झुग्गियां तोड़ दी, जिसमें एक बच्ची की भी मौत हो गई। केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने इस बारे में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बात की, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रूस के वोरोनेश इलाके में क्लिनिक में आग लगने से 22 मरीजों के मारे जाने की खबर है। कई मरीज गायब भी हैं और 20 से भी ज्यादा घायल हैं। ये क्लिनिक लकड़ी से बना हुआ था, जो इस आग में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान के कवायली इलाके कुर्रम एजेंसी में एक भीड़ वाले बाजार में हुए धमाके में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे दीपक जसरोटिया। ठीक 1.5 के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।